धूप और बेला तो मैंने कहा था, उसके बाद में आरंभ करता हूँ। पहले मैंने केवल ये बतलाया था कि आज व्यास पूजा कर सकते हैं। हम लोगों के गुरु परंपरा में व्यास जी की गद्दी पर बैठकर जो भगवत कथा का प्रचार प्रसार और आचरण करता है वो आचार्य है या गुरु होता है। उसको भी भगवान का स्वरूप ही समझो। बतलाया गया है कि साक्षात फरिते न समस्त शास्त्र तथा भाव देते वो सदैव धिया भिन्नम पश्ये इत्यादि शास्त्रों में गुरु को भगवान से अभिन्न देखने के लिए जो कहा गया है वह प्रियत्वेन भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए शंकर जी का भगवान से अभिन्नत्व इसी विषय में भगवान के बहुत प्रिय हैं। सत् संदर्भ में से तत्ता भक्ति संदर्भ में इन्होंने गुरु तत्व के संबंध में ये सब चीज़ें बतलाई हैं। विशेषकर ये बतलाया कि पहले गुरु का लक्षण दिया, ये गुरु के लक्षण क्या होनी चाहिए। गुरु तो कर्मिक ज्ञानी योगी तपस्वी सभी करते हैं, किंतु गुरु का लक्षण क्या है। सवेरे कुछ हम लोगों ने बतलाया था कि रूपानुगत ही गुरुत्व है। गुरुत्व का माने अंतिम उत्कर्ष है। वैसे जो कोई भी परमार्थिक शिक्षा देता है मध्यमाधिकारी भी, और यदि वो सरल निष्कपट वैष्णव है तो वो गुरु है। भले ही शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो भी कोई बात नहीं, भगवान में भक्ति होनी चाहिए, यही प्रथम। उनको कहा गया है कि इसे समस्त शास्त्रों में पारंगत होने पर भी यदि भगवान की अनुभूति नहीं है तो गुरु नहीं है। भगवत अनुभूति होनी चाहिए। जिसके हृदय में स्वयं ही भगवान नहीं है वो दूसरे को शिष्यों के हृदय में राधा कृष्ण को कैसे बैठा सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। इसलिए भगवत अनुभूति संपन्न ही गुरु का प्रधान लक्षण है और शास्त्र ज्ञान इत्यादि गौण लक्षण है। बहुत से लोग शास्त्र ज्ञान की तरफ में चले जाते हैं और अनुभूति की तरफ में नहीं ध्यान देते। इसलिए गुरु करने पर भी गुरु और शिष्य दोनों को विशेष कुछ लाभ नहीं है। इसलिए गुरुत्व का यही प्रधान लक्षण है कि भगवत अनुभूति। भगवत अनुभूति भी किस रूप में, जो हमारे संप्रदाय का वैशिष्ट है। रूप गोस्वामी के विचारों में परिपक्व हों और अनुभूति संपन्न हो तो वो यथार्थ में हम लोगों के संप्रदाय के गुरु। बतलाया ये भी गया है कि हम लोग के अंदर में काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य है, इसका तृप्त अपराध है, धामापराध है, सेवापराध है। इनको दूर करने के लिए एक एक स्पेशल रूप में शक्ति की आवश्यकता है और वो भी बड़ा कठिन है। जैसे गीता में बतलाया काम ऐसा क्रोध ऐसा काम, यह काम और यह क्रोध मनुष्य को अधोपातित करता है, इसको दूर करना चाहिए। किंतु क्रोध को कैसे दूर करेंगे? पहले विषयों में चित्त जाता है, कामना होती है, तब काम ऐसा, पहले काम होगा और काम के पूरा होने में यदि बाधा आती है तो क्रोध हो जाएगा। यदि क्रोध होगा तो आत्मश्रम मोह माने बुद्धि मोहित हो जाएगी, क्या करनी है क्या करनी है बुद्धि लोप हो जाएगी और इसके बाद में विनाश हो जाता है। इसलिए कामना ही नहीं होनी चाहिए, तो कामना कैसे नहीं होगी? कामना कैसे नहीं, क्यों नहीं होगी? मन तो उसी तरह का बना है, तो इससे बहुत मुश्किल होता है जैसे इनसे छुटकारा पाए। इसलिए क्रोध भी नहीं जाता है, काम भी नहीं जाता है, क्रोध भी नहीं जाता है, तो ये कैसे सब जाएगा? मन को कामनाओं में ही मत ले जाओ। इसलिए सब विषयों के तरफ में देखना ही मना होगा, ये भी असंभव, बहुत कठोर कठोर उपाय और वो भी ठीक से नहीं। किंतु एक गुरु की सेवा करने से काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य अपराध इत्यादि सभी कुछ दूर हो जाए, एक गुरु की सेवा से। किंतु गुरु भी उसी कोट के आमने जाए, कैसा कोटि का? इतने ते करिया क्यों आर ना करी हम मने आशा, वो क्या है?
गुरुमुख
पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य, ऐक्य माने क्या? इसके दो अर्थों में गुरुमुख से जो वाणियां निकली हैं उसी को एक को ही सर्वस्व समझ करके उसका पालन करो, और दूसरा है शास्त्र वैष्णव और गुरु, तीनों बातों को एक करके, क्योंकि और नरोत्तम ठाकुर क्या यह है तो नरोत्तम ठाकुर ने वो भी लिखा
साधु शास्त्र
साधु शास्त्र
गुरु
गुरु वाक्य तीनों ते करिया, इसलिए एक का अर्थ वो लेना पड़ेगा। क्या शास्त्र जो कहते हैं और वैष्णव जो कहते हैं और जो गुरु कहते हैं, तीनों को एक लेना पड़ेगा। यदि फर्क है कोई उसमें भेद है तो जिसमें दो एक होते हैं उनको लो और उसके अनुसार में विचार करो। यदि तीनों का एक ही विचार है तो वो ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। यदि तीनों में से दो एक तरफ है एक एक तरफ है तो कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है उसका उद्देश्य कुछ हो, समझने में गड़बड़ी हो रही है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी एक कहते हैं, प्रभुपाद जी एक कहते हैं और उसमें भक्ति विनोद ठाकुर का शास्त्र भी ठीक कह रहे हैं, एक उनके शुरू में है, तो प्रभुपाद जी कहेंगे गलत कहेंगे? नहीं, वो सिद्ध है ना, इसलिए वो जो कहते हैं वो ठीक है, समझने में भक्ति विनोद ठाकुर को हमको दोष है ना, ऐसा उस समय मत समझो। प्रभुपाद जी जगत विख्यात हैं, सिद्धांत परिपक्व हैं, भगवत अनुभूति संपन्न हैं, शास्त्रों का जो अर्थ करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसलिए वो जिस लाइट में शास्त्रों की बातों को कह रहे हैं या भक्ति विनोद ठाकुर के बातों को कह रहे हैं, कुछ अटपटा लगने पर भी वही ठीक है। ऐसा ही एक हुआ था अभी, भाई कृष्णेति जस्य ग्रिंतं मनसाद्रियेत दीक्षास्तेत प्रणत भिष्य भजन्तमीशम शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्न निन्दादि शून्य हृदमेप्सति संगलब्धा। भक्ति विनोद ठाकुर का जो एक नाम यदि करता है उसको प्रणाम करो, यदि उसकी दीक्षा हो गई है तो मन के द्वारा प्रणाम करो और ऊपर से भी प्रणाम करो, और जो निंदा इत्यादि शून्य होकर के निरंतर हरि नाम करते हैं और अष्टकाली लीला सेवा में अंतर्मना होकर के भजन करते हैं तो अपना प्राण दे करके भी उसको बंधु जान करके, परम हृदय का बंधु जान करके उसकी सेवा करो। प्रभुपाद ने कहा, थोड़ा सा अदल कर दिया अर्थ, श्लोक पे एक ही प्रभुपाद ने कहा, दीक्षास्ति चेत, यदि ऐसा है तो एक कृष्ण नाम भी यदि वो करता है तो वो शुद्ध नाम है। ऐसे महात्मा को मन के द्वारा, मन माने आदर के साथ में और शरीर के द्वारा उनको प्रणाम करो, दीक्षास्ति चेत। इसी पर कहीं विचार हो रहा था, कुछ और लोग थे बैठे, वो लोग कह रहे थे जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का कहना ही ठीक है, और गुरु जी ने कहा भक्ति विनोद ठाकुर को कौन चिन्हाया, पैसा कम दिया, कैसे जानते हो भक्ति विनोद ठाकुर को, प्रभुपाद ने दिया, और प्रभुपाद डायरेक्ट उनके शिष्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर के उनके शिष्य हैं, उनके विचारों को अवलंबन किया है और जो कुछ सुना है उन्हीं से सुना है, तो ये जरूर भक्ति विनोद ठाकुर का ही विचार ये कह रहे हैं, इसलिए ये ठीक। अंत में बात जाकर के सब लोगों ने इसको स्वीकार किया, इसलिए विशेष विशेष बातों में उसको विचार करना चाहिए। इसलिए गुरु की सेवा विषम्भ रूप से होनी चाहिए, विषम्भ होने के लिए हमको उसी लाइन पर पहुंचना होगा, उसी स्टेज पर पहुंचना होगा जिसमें गुरुदेव हैं। भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के समान बनना पड़ेगा, तो गुरु की सेवा करने के लिए भी गुरु के विचारों के निकटतम होना पड़ेगा, उनके विचारों को समझना पड़ेगा क्या चाहते हैं। इसलिए अदेव होकर के देवता की जैसे पूजा नहीं किया जाता, ऐसे गुरु के विचारों को समझे बिना गुरु जी की सेवा भी नहीं होगी। इसलिए वैसे भी संभव रूप से यदि सेवा की जाए तो गुरु प्रसन्न होने पर, और लोग जो चाहते हैं भाव सागर से करना, जैसे सवेरे ये सब बच्चे कह रहे थे, कोई मोक्ष के लिए, कोई वैकुंठ के लिए, कोई द्वारका के लिए, कोई कुछ चाहते हैं, कोई सुबह श्रीधाम का अनुगत्य के लिए, कोई जसुदा नंद बाबा के अनुगत्य के लिए, कोई सखियों के अनुगत्य के, और हम लोग के गुरु वर्ग क्या चाहते हैं, रूप गोस्वामी के चरणों की धूलि की सेवा की प्राप्ति के लिए, ये सबसे बढ़कर की चीज है। क्या प्रभुपाद ने कहा, आददानस्तृणं दन्ते हृदये इदं याचे पुनः पुनः स्मद् रूप पदां भोज धूलि स्यात् जन्मनि जन्मनि। मैं समझता हूं कि राधा कृष्ण की सेवा की प्रार्थना की अपेक्षा भी जीव स्वरूप के लिए यही सबसे सुंदर और उत्तम ये अभिलाषा है, इससे बढ़कर के और कोई अभिलाषा नहीं हो सकती है। इस गुरु परंपरा में श्रील प्रभुपाद के, प्रभुपाद जी आए तो उनके बहुत से परिकर हुआ है, और बहुत थोड़े समय में ही विश्व में महाप्रभु जी के आचरित और प्रचारित वाणी का प्रचार किया। उनमें से नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद इसमें भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी अन्यतम है, इनके ये शिष्य हैं, यही इनका परिचय है। वैसे किसी का परिचय दिया जाता है वंश के अनुसार, पिता का माता का परिचय देने पर उसका परिचय होता है। तो ये प्रभुपाद जी के की शिष्या थी, इनकी मैया, मैया का नाम मुझे याद नहीं, याद है कोई? मैया इनकी थी सरदवासिनी, सरोजवासिनी तो भगवती देवी, भगवती देवी इनका नाम था। इसमें से किसी ने देखा है उनको?
मैं देखा,
कोता देखी?
नवद्वीप मठ है गुरुमाया मठ,
अप्रकट पर
गुलाब बगान छोड़ कुड़ी फूल तुलता हम बोल ले जाए महाराज आपने नाम बोल फला तुलता पर चले तो मैं बोले।
ये प्रभुपाद जी की शिष्या थी भगवती। और इनके पिताजी कौन थे? हमारे गुरु महाराज जी के शिष्य थे, बाकी इनका वंश का सब लोग एक मैया को छोड़कर के बाकी सब इनका वंश इनके भाई पिता और चाची इत्यादि सब लोग गुरु महाराज जी के शिष्य। इनकी मैया सबसे पहले प्रभुपाद जी के आश्रित थी, तो उन्हीं ने गुरु जी के चरणों में इनको सौंप दिया, छोटी उम्र में सौंप दिया। इनका पालन पोषण पिता तो वो थे गुरु जी, और पालन पोषण कौन करता था? नरहरि प्रभु, वे गौड़ीय मठ की माता जी थी। कोई पैखाना पेशाब कर देता बिछौने पर तभी साफ कर देते, और रात में आरती के समय में सब बच्चों को जाकर के देखते थे, लालटेन थी उसमें तो बिजली नहीं थी, सबको देखते कैसा कैसा सोया है, उसको उठा करके ले आते, उनको पढ़ाते लिखाते खिलाते पिलाते प्यार से रखते। तब इतने उस समय में लोग थे, संसार में जितना लोग प्यार करते हैं गुरु से यदि अधिक प्यार करता है तभी तो सब बच्चे उनको उनके प्रति आकर्षित होंगे, इसलिए गुरु को इतना स्नेहशील होना चाहिए तभी वो सबको आकर्षण कर सके। तो ये बतलाया गया बचपन का नाम संतोष था, तो इनका ये परिचय हुआ। एक तो गुरु परंपरा से ब्रह्म मात्र गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के प्रधान शिष्यों में से एक अन्यतम श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के ये हम लोगों का पारंपरिक परिचय। और किंतु अभी इसमें परिचय रह गया है, ये अभी स्थूल परिचय है, और यदि वो कभी परिचय देंगे अपना अंतर परिचय तो पीछे पता लगेगा। और स्थूल परिचय बंगाल के कौन कौन जिला? जसौर जिला, खुलना जिला, खुलना जिला, नरहरि प्रभु जी जसौर के, हरिदास ठाकुर जी जसौर के वहाँ के थे, किंतु बचपन से ही प्रभु यहाँ पर गौड़ीय मठ में ये प्रतिपादित। उस समय में भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट में गुरु महाराज जी ने इनको इनका भर्ती किया, और वहीं रह करके आश्रम में ये पढ़ने जाते थे। इनके साथ वाले बहुत लोग थे जो पढ़ते थे, किंतु कोई भी ब्रह्मचारी या सन्यासी नहीं रह गया, करीब करीब सभी लोग चले गए, एक दो इनके साथ में, बाकी सभी लोग चले गए। ये बहुत ही बचपन से ही विद्यानुरागी थे, बहुत विद्यानुरागी। सेवा के संबंध में आप लोगों को बतलाया, जो पत्ता देना, झाड़ू देना, लोगों को पानी देना, नमक देना, ये सब, फिर झाड़ू उड़ू दे करके साफ करना, इनका ये पहले काम। तरकारी अमान न करना एक वैष्णव मठों में एक प्रधान कार्य है। इतना स्विफ्ट, इतना तेजी से ये बनाते थे ना सब्जी, ये इसका हिसाब नहीं। इधर देख रहे हैं, इधर घर का अब छोटा बड़ा नहीं, एक साइज का। गुरु महाराज जी की सेवा करते समय इनको 104 बुखार हो गया, और सब मठ में आए हैं बाहर के अतिथि लोग, वैष्णव लोग आए हुए हैं, और कोई दूसरा आदमी रसोई बनाने वाला नहीं, कोई भी नहीं। उस समय में कहते हैं तुम सोया हुआ, बुखार तुमको आया है, जल्दी उठो, एकदम डांट करके उठा दिया, और वो आकर के 104 डिग्री में रसोई बनाया, सब काम किया। कहते जाओ, पहले ये सब काम करके तब जाकर के सो। अभी 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 कुछ होगा ऐसा, कोई करेगा 104 डिग्री बुखार में सब सेवा? उसमें आदमी उठ ही नहीं सकते हैं, चिंता नहीं की जा सकती, ऐसे सेवा। मायापुर में बाढ़ आई थी, बाबू महाराज जी के मुख से मैंने सुना, हम लोग जब गुरु जी के समय में एक साथ में रहते थे, प्रचार में भी एक साथ में, गुरु जी के साथ में, और कोई नहीं जाए तो हम और वो और कोई, ये चारे आदमी गुरु महाराज जी के साथ में मेदिनीपुर, 24 प्रगना, कहाँ कहाँ सब हम लोग उनके साथ में जाते, तो बहुत सी बातों को जानने का अवसर है। वो कहते एक बार मायापुर में बाढ़ आई, तो वो बाढ़ में घिर गए, तो वो नौका लेकर के, नौका चलाने में एक्सपर्ट होते हैं पूर्वी बंग वाले, तो नौका लेकर के और बाढ़ में गए, इतने में खूब जोर से करंट आया और उनकी नाव को एकदम धारा में लेकर के डाल दिया। अब तो ये बड़े भारी विपत्ति में पड़े। इतने में एक कोई पेड़ मिल गया, तो पेड़ को इन्होंने पकड़ लिया और नौका को उसमें से लगाया, इतने में देखा जो ऊपर से सांप ऐसे ऐसे सब कर रहे हैं, उनको कोई जगह नहीं है जाने का, उस पेड़ पर ही आश्रय दिए हुए हैं। अब चारों तरफ आपका जैसे इधर सब सांप यदि गिर जाए तब तो फिर मुश्किल। फिर भगवान का नाम लेकर के मैं चुपचाप पेड़ को पकड़ रहा, थोड़ी देर के बाद में लोगों को मालूम पड़ा, तो फिर से लोग लोग करके मल्ला सब ले करके हमको बचाने के लिए आकर के सब ले करके, अकेला खड़ा हूँ पहन करके बेलगाछ के ऊपर में या और पेड़ों के ऊपर में सब चढ़ते थे। मैं भी जब आया तो मैं भी खड़ा हूँ पहन करके ही 4 माइल, 5 माइल, 6 माइल, 7 माइल सब चलता था, तो करता ही क्या किया था, और कुछ नहीं। मोटा धोती ये सब हम लोग नहीं जानते थे, ये क्या चीज है, मठ में चाहे शीत हो चाहे जाड़ा हो कितना बैराग्य के साथ में रहते थे। अब के आदमी कल्पना नहीं कर सकते कितना बैराग्य के साथ में। हम लोग भी बड़ी बड़ी नौकरी करते थे, मठ में आकर के मार्किंग का, ये वो भी इतना तक ही, और किस प्रकार से बैराग्य रखे कि दिन रात सेवा में लगे रहते, उनको तो और फुर्सत नहीं, मठ का सारा भार उनके ऊपर है, गुरु जी तो बाहर इधर। इसके बाद में फिर वो प्रेस के इंचार्ज चुचुड़ा में बने, प्रेस में पत्रिका आरंभ हुई हमारे आने के बाद ही में, गौड़ीय पत्रिका। नरसिंह महाराज जी थे, उनके चचा जी थे, उनके पिताजी के बड़े भाई,
तो प्रभुपाद शिष्य थे,
प्रभुपाद जी के शिष्य थे, नहीं नरसिंह महाराज जी प्रभुपाद के शिष्य थे, और श्रीधर महाराज जी से संन्यास लिया, किंतु बड़े पक्के आदमी, गुरु जी को और सब लोगों ने छोड़ दिया, नरोत्तम प्रभु और सब लोग, किंतु इन्होंने कहा जो रहेंगे तो सिंह के साथ में रहेंगे, बकरी के साथ में,
भेड़ के साथ,
और उनके साथ में रह करके हमने प्रचार किया। उस समय में जब स्कूल स्थापित हुआ तो गुरुजी खुद बतलाते थे कि सब स्कूलों में रविवार को छुट्टी होती थी। हमने कहा जी हमारे स्कूल में रविवार को छुट्टी नहीं रह करके एकादशी को छुट्टी रहेगी, तो गवर्नमेंट इसके लिए आपत्ति कहीं लगाया कि नहीं जैसा सबका स्कूल है वैसा रहेगा। हमने मैनेजमेंट आपका केवल रहेगा ऊपर से, किंतु ये सब हम लोग करें। यदि ये किस थ्योरी से होता है, हमारी सनातन भारतवर्ष की परंपरा से होता है ना, अंग्रेजों का के भाव से और उनके संस्कृति से होगा। हम लोग रविवार को नहीं, हम लोग करेंगे तो नहीं तो गुरुवार को करेंगे। गुरुवार माने क्या? बृहस्पति अथवा एकादशी। उन्होंने कहा जिसे लड़के सब विषय में फर्स्ट रहे और एक धर्म का पीरियड उसमें फेल रहे हैं कि तम सबको फेल बना, और जगह है धर्म ऑप्शनल है, ऐच्छिक, उसे कोई मतलब नहीं। गुरुजी ने कहा हमारे स्कूल में यही होगा, धर्म की परीक्षा होगी, उसमें जो फेल हो जाएगा वो सब विषय में फर्स्ट करने पर भी
फेल माना जाएगा,
उसको फेल माना जाएगा। और ऐसा ही किया, अंत में मुसलमानों ने और दूसरे लोगों ने गवर्नमेंट को लिखा कि हमारा लड़का सब विषय में पास है किंतु धर्म विषय में फेल है, तो इसको फेल कर दिया है। तो हाई कोर्ट तक चला, किंतु अंत में हमारे गुरुजी की ही जय हुई। तो इस तरह से गुरुजी का स्पेशल विचार था, इसलिए उस स्कूल में जो जो पढ़े सब लोग धार्मिक प्रवृत्ति, भले वो गृहस्थ हो गए किंतु धार्मिक प्रवृत्ति के। बाबू महाराज जी, मैंने कहा था ना जो बहुत छोटी उम्र में आए थे, बहुत छोटी उम्र में, वो प्रभुपाद जी के समय में आए थे, यहाँ तक कि श्रीधर महाराज जी से पहले आए थे। श्रीधर महाराज जी थे ना, वो अकालत पास करके हम समय 1934 या 35 में आए थे, 35 या 36 में, और तो 35 में। बान महाराज जी करीब करीब 30 में आए थे, भूल रहे थे, हाँ तक 30 में आए, और मैं आया हूँ 1946 में। तो देखो कितना 16 वर्ष हमसे पहले आए, और उस समय से गुरु जी की सेवा करते हैं, उनके विचारों को सुनते हैं। इतने पहले 1930 में आए, इसलिए बहुत से बड़े बड़े लोग भी, सिद्धार्थ पूज्यपाद महाराज इत्यादि भी उनसे पीछे आए हैं। तो उस समय में उन्होंने हरिनाम क्यों नहीं लिया, प्रभुपाद जी से हरिनाम दिया था,
फिर माला का चुरा लिया,
कुछ गड़बड़ी हो गई तो मठ छोड़ देना पड़ा। तो फिर इनको कहीं दूसरी जगह में हरिनाम लेने के लिए कहा, माला देने के लिए, उन्हें पर भी गुरु जी ने अंत में इनको संन्यास लेने के बाद में जो गौड़ीय वेदांत समिति कलकत्ता में स्थापित की, तब से अपने पास रखा और उनको हरिनाम दीक्षा सब मिली, और संन्यास हमारे साथ में ही 1946 में हम आए हैं,
47
त्रिविक्रम पूज्यपाद बावन महाराज जी का, त्रिविक्रम महाराज जी और हमारा, तीनों आदमियों का उस समय में संन्यास हुआ। उस समय में हम तीनों आदमी ने कहा हम लोग संन्यास के योग्य नहीं हैं, हम नौ नहीं लेंगे। पहले बावन महाराज जी से पूछा गया, त्रिविक्रम महाराज से उम्र में सबसे बड़े, वो करीब करीब 78 वर्ष के होंगे पूज्य पाद बामन महाराज जी, 74 वर्ष के या 73 और मैं इनसे भी 2 वर्ष छोटा है,
एक बोले
तो ये 1 वर्ष। तो त्रिविक्रम महाराज जी से पूछा गया, महाराज मैं संन्यास नहीं लूंगा। तो क्यों? तो प्रभुपाद जी इतने बड़े विद्वान थे, नेमी महाराज कितने बड़े विद्वान थे, सौती महाराज कितने बड़े विद्वान थे, गुरु महाराज जी कितने बड़े विद्वान हैं, और सबको देखते हैं कितने बड़े बड़े विद्वान हैं, और सभी लोग सब विषय नहीं है, मैं नहीं लूंगा। तो बाम महाराज जी से पूछा गया, उन्होंने कहा तब हम भी नहीं लेंगे। तो हमसे पूछा गया तो राजा हम भी नहीं लेंगे, तीनों आदमी हम लोग नहीं लेंगे। तो नरसिंह महाराज जी बोले हमसे आकर के संन्यास नहीं लेगा, नहीं क्यों, अत हम योग्य नहीं। तो योग्यता तुम्हारी गुरुजी देखेंगे ना तुम देखेगा, गुरुजी देखते हैं ना तुम देखेगा, तुम अपने लाभ के लिए नहीं लेगा ना गुरुजी की सेवा के लिए लेगा। गुरुजी जो चाहते हैं वो होना चाहिए कि तुम जैसा होना है, तो घर में क्यों नहीं रहा। बड़े युक्तिवादी थे, तो हमारे दिमाग में आ गए, तुमने कहा जैसा अच्छा मैं लूंगा चाहे जो कुछ हो जाएगा। गुरुजी यदि नंगता रखेंगे तो नंगता रहेंगे, संन्यास दे देंगे तो संन्यास ले लेंगे, लाल कपड़ा दे देंगे वो ले लेंगे, जो कुछ कहेंगे वही करूंगा, अपने विचार से अब नहीं करूंगा। तब तो बाम महाराज जी से पूछा, तो उन्होंने हम नहीं ले, कहा जैसे तुम नहीं लेगा तो त्रिविक्रम महाराज से पूछा, वो भी राजी नहीं है, कहा जैसे तब अकेले नारायण महाराज इनका गौर नारायण का अकेले संन्यास होगा। गुरु महाराज ने कहा जी अकेले ही इसका होगा और किसी का नहीं होगा। जब तैयारी पूरी हो गई तो फिर इन लोगों ने कहा जैसे उनका होगा, भाई जिस विचार से ये ले रहे हैं, जो गुरु जी जैसा चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए, हम योग्य हैं कि नहीं, तब फिर हम लोग भी लेंगे। अंत में वो लोग भी राजी हो गए। फिर इस तरह से तीनों आदमियों का पहला संन्यास हुआ। सचमुच में मैं देखता हूँ कि ये दोनों संन्यास के यथा उपयुक्त है। अभी तो मैं जैसा संन्यास का देख रहा हूँ स्तर गिर गया है, जिनको कोई सिद्धांत का ज्ञान नहीं, विचार का ज्ञान नहीं, कोई भागवत इत्यादि में कोई प्रवेश नहीं, कुछ जानते नहीं, वो लोग भी संन्यास ले रहे हैं। तो इन लोगों की उस दृष्टि से देखें तो कितनी योग्यता है संन्यास की। सचमुच में योग्यता यही है कि मैं गुरु जी की सेवा करूंगा, यही उनकी योग्यता है। बाण महाराज जी ने प्रारंभ से जो सेवा की है वो आदर्श है। गौड़िया पत्रिका की और गुरु महाराज ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं सब एक बार डिक्टेशन दे देते हैं, इसके बाद में नहीं देखते हैं कुछ, और यही सब कुछ करते हैं। पत्रिका बामन महाराज जी चलाते थे, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्रबंध, गुरु महाराज जी एक प्रबंध दे देते थे बस, और बाकी सब बामन महाराज जी कहाँ कहाँ से सब चुन चयन करके कैसे कैसे सब ये सब देते। उस समय में ये सब नहीं था, कैसेट फैसेट कुछ नहीं था, किंतु वो सबको ऐसे कहाँ कहाँ से उनके लिखे हुए कौन कौन पत्रिका में से लेकर के और उसको चलाते थे। पावन महाराज जी बड़े लज्जा वाले व्यक्ति थे, इसको लज कोपड़ कहते हैं, कन्या राशि के बहुत लज्जालु, किसी से बोलेंगे नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो कोई आदमी आने पर उनसे बातचीत नहीं करते हैं, अभ्यर्थना नहीं करते, किंतु बात ये नहीं, लोग समझते नहीं, बहुत लज्जालु स्वभाव के हैं, बातचीत भी बहुत कम करते हैं। अब वो बातचीत भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं, पहले उनको पाठ करने के लिए दिया जाता था, हमारे समय में भी देखा है बंगवान पाठ करें, एक तो बोलते नहीं, तो गुरु महाराज जी हमको कहते थे पाठ करो, हमको बंगला नहीं आती थी तभी, तो जरा सुर से ये बयार को सुर से पढ़ता था और कीर्तन जानता था, थोड़ा सा कीर्तन करता था, कीर्तन कर देता था। तो गुरु जी कहते थे यदि कुछ भाव भी सू जाते जाए कहीं पर ना, तो हमको कह देते, और हमें लज्जा नहीं थी,
देश बारे
जो कुछ आए ना आए कह दिया तो हम उठ करके बोलने लगते थे, इसलिए हमको कहते। बांग महाराज जी को एक बार हमको याद है, हम लोग कहीं प्रचार गए थे, बांग महाराज के गुरुजन ने तुम पाठ करो, महाराज बड़ी विपत्ति में फंस गए, अब क्या करें, पाठ कैसे करें। उन्हें वो चैतन्य ने श्रीमद भागवत लेकर के भागवत पढ़ रहे हैं, उसका श्लोक वो तो सब उच्चारण बहुत सुंदर, आप उसमें जो अनुवाद किया है बस उसको पढ़ करके फिर दूसरा श्लोक फिर अनुवाद, बड़ी मुश्किल से बोले चले बोलते हैं बहुत लजालू स्वभाव। गुरु जी ने देखा जैसे इसको कैसे क्या करें। गौड़ीय पत्रिका के वो इंचार्ज थे, संपादक थे, संपादक नहीं माने करते तो वही सब कुछ, वो प्रकाशक थे, उनको कहा जाए तुम प्रचार में जाओ, बस उनसे पत्रिका का वो लेकर के नव जोगेंद्र नहीं वो था विश्वनाथ उसको लेकर के चाहते थे जाओ। बाबा महाराज जी बहुत दुख हुआ, ये हमारा मठ छोड़वा दिया, चुचुरा छोड़वा दिया, प्रेम छोड़वा दिया, अब मैं क्या करूं, बहुत दुखी हुए, राग दुख शोक सब कुछ उनको हो गया, बहुत दुखी होकर के बिचारे। आज जब लौट करके आए तो एकदम बदल गए, अब प्रेस में नहीं रहे, और तब से जो निकले है वो मैंने प्रतिज्ञा कर दिया उन्होंने बिगड़ करके, अब हम प्रेस का काम जब लगाएंगे भी तो नहीं करेंगे, तो वो सचमुच में ऐसा ही हो गया, फिर प्रेस में वो नहीं लगे प्रचार करने, अब तो दो दो तीन तीन घंटा व्याख्या और क्या क्या करने लगे
ट्रेन।
और दूसरी बात, एक समय वो बीच बीच में प्रेस में रहते हुए कभी कभी दो एक दिन के लिए निकल जाते थे, कोई को पता नहीं कि कहाँ गए। उनकी एक विशेषता ये है, क्या करेंगे ये बोलेंगे नहीं, कहाँ जाना है ये भी नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं कहेंगे, बोलबे ही ना जी कुछ जाते। रात में 9 बजे चाहेंगे, 8 बजे एक बार 8 बजे रात में वहां से निकले चुचुड़ा से गाड़ी पकड़ करके कलकत्ता हो करके कृष्णनगर काशी नगर के पास में, तो जब स्टेशन जयपुर में उतरे तो जयनगर में उतरे, तो उतर करके और वहां से चले पैदल, और कोई उस समय उपाय नहीं था, जाना है करीब करीब 3 मील 4 मील जाना है, रात हो गई है 11 बज गया है, और उस समय में वो उनको जाना है वहां पर, रास्ता बड़ा बीहड़, एक जगह आए तो देखा जैसे रात में 12 बजे करीब में उत्सव हो रहा है, एक जगह नदी के किनारे विवाह हो रहा है, तो विवाह में पूरी टूरी सब बन रही है और क्या क्या हो रहा है और नाच गान तमाशा हो रहा है। इतने में जो विवाह वाले बाराती थे, लड़की का बाप जैसा वो आकर का उनको प्रणाम करके कहा महाराज जी
लड़की को आशीर्वाद दे दीजिए,
आप लड़की को थोड़ा सा आशीर्वाद देने के लिए चलिए, आशीर्वाद देकर के तब जाए। महाराज जी मैंने तो उस समय तो ब्रह्मचारी थे, शायद सफेद कपड़ा ही था उस समय कि लाल कपड़ा था, मैं भी आ गया उस समय चले, तो उस समय में छोटी सी उम्र थी, अब दुबले पतले एकदम मोटा था, अब हो गए हैं, तो ये कथाएं बच्चों को सुनाते थे और उनका खड़ा हो जाता था, ऐसे बच्चों को कहानी में बड़े पटू, तो वो बच्चों को सुना रहे हैं जैसे मैं वैसे जब वहां आया तो देखा जब बारात और लड़की वाला करा जी आशीर्वाद दे दीजिए, अब उससे चारों पांच तरफ में खड़े हो गए जो चलिए देखे जी क्या करें, जैसे हमको कुछ डर भी लगा, रोमांच हो गया जी, ये शादी हो रही है क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा शादी, ये समझ भी नहीं सके जैसे ये कोई कुछ है, सचमुच शादी ही है ऐसा समझ है। थोड़ी देर के बाद में ये हरि नाम करने लगे, थोड़ी दूर जा करके और वो आगे आगे ले जा रहे हैं बड़े आनंद से, यदि चले गए होते तो प्राण बचना बड़ा भारी असंभव था, फिर से क्या सोचा और हरिनाम करते करते फिर वहां से चले आए, फिर बाधा नहीं दी। हरिनाम करने लगे जोर जोर से तो उगा दिए। जब यहाँ आए तो पिसी माँ ने उनसे पूछा, जा रही बाबा तुम्हें एखन कोथा थेके आसली? ওই মাঝখানে তো ভীষণ অবস্থা, ওখানে ভূত সব বগল দিয়ে আছে, ভূত রাতে হ্যাঁ তো ওহা তো বারাত থি, ওহা তো ভূত কা কোই বাত। আরে ও বারাত নেই থি, কোই শাদি ফাদি নেই, ও তো ভূত থে সব, এসা কর লে। তা বলি আরে বাবা, ফির নেই গয়ে তো আসি আসি সব রাত।
ওখানে মানে জিতেন ভাই বলছিলেন এই বিষয়ে, বলে যখন প্রেসার কাজ করতে দিমাগ একদম গরম হয়ে যায় তখন চলে যেতাম। পরমদেব বলতে মোল্লা দেব নসিব দেখ পিসি এবার গেছে কোথায় যাবে আর।
যাব গুরুজি বক্তৃতা করতে থে লিখনে মে বহুত তেজ, এক সময় মে এক মহিনে মে 30 দিন হতে হ্যায়, 30 দিন মে 40 ধর্মসভা কিয়া গুরুজি। जहां जहां कुछ होती बाबू महाराज जी चट लिख लेते थे, वही सब पत्रिका में ये सब छपता था। बोसपाड़ा में जब गौड़िया मठ को छोड़ करके ये आए तो बोसपाड़ा में गौड़िया वेदांत समिति की स्थापना हुई, तो ये भी थे। रसोई सोई बना करके सब वैष्णव लोगों को खिलाना पिलाना, ये सब परिवेशन करना, ये सब करते। उसी समय में श्रीधर महाराज जी गए थे और ये हमारे नृसिंह महाराज जी थे, अभय चरणार्थ वेदांत से। और अभी हम लोगों में जीवित एक आदमी और है, शांत महाराज, उसमें ब्रह्मचारी था, अभी उसकी उम्र 95 या 96 कहते हैं अभी भी है। तो वहीं पर गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना थी, तब से ये है, उसके बहुत पहले से ही। एक समय की बात है, प्रेस में चुचुड़ा में वो प्रूफ देखते समय देखने के बाद उसका करेक्शन होता है, तो करेक्शन करने वाला कोई नहीं था, तो अपने ही मशीन चला करके और उसको प्रूफ निकाल करके और उसको करेक्शन करके और उसको चालू कर दिया प्रेस को और कागज देने लगे। इतने में हाथ पर वो ऊपर से पूरा हाथ करके आ गया, हाथ एकदम पीस गया और अंगुल भी कट गई, सर लहू लुहान हो गया। गुरु महाराज जी अपने घर में थे, सुना जैसे ऐसा हो गया, गुरु महाराज जी भी रोने लगे और जल्दी से उनको पकड़ करके बस एकदम सीधा कलकत्ता ले गए और कलकत्ता ले जा करके मेडिकल कॉलेज में उनको 2-4 दिन रख करके ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ धीरे धीरे जब हुए तो फिर उनकी गुरु महाराज जी विदिग्न हो गए, उनके लिए रोने लग गए। वैसे गुरु महाराज जी बड़े गंभीर प्रकृति के, कभी भी ऐसा नहीं देखा जाता, किंतु उस समय मैं मठ में आ गया था, उस समय था मैं मठ में, तो मठ में नहीं था, गुरु जी के साथ में प्रचार से अभी आया हुआ था, हम अभी भी शाम कर रहे थे, या मैं सीधा बाड़ी में आनंद के साथ में था उस समय। और भी एक बार अस्वस्थ हो गए तो सब काम गुरु महाराज जी छोड़ छाड़ करके चले गए, उनको लेकर के नैनीताल के पास में कहा
शिमला,
शिमला में ले जा करके उनको चिकित्सा कराया। अंत में उनके गुण हैं बतलाया, लज्जा पहला, अपनी कभी भी प्रशंसा नहीं करना, बहुत गंभीर रहना, स्मरण शक्ति अद्भुत, वाग्मिता भी है, लेखक अच्छे हैं, बहुत लेखक, गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र और सब कुछ बहुत से ग्रंथों का उन्होंने प्रकाशन किया है। अहंकार शून्यता है। दूसरी बात, किसको देते हैं कुछ कभी